ओम शांति। जीवन में सत्य की तलाश थी हम सभी को, उस परम सत्य की। वो परम सत्य ड्रामा अनुसार हमें मिला भी, हमारे जीवन में आया। आकर के बाबा ने हमें अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए और उस परम सत्य की स्मृति दिलाने के लिए कुछ श्रीमत दी। बच्चे श्रीमत को पालन करने में गफलत करने लगे, आलस्य अलबेलेपन में आने लगे, तो बाबा ने बच्चों को आकर जगाया। बाबा ने कहा कि बच्चों को जगाने के लिए बाबा ने क्या कहा, अब नहीं तो कब नहीं। आज की जो मुरली हमें दी गई है उसका टाइटल भी है अब नहीं तो कब नहीं। ये मुरली 24 मार्च 1985 की है। इस मुरली में बाबा ने पहला पॉइंट जो कहा है वो बाबा ने कहा कि समय बदलने से शुभ संकल्प भी बदल जाते हैं। बाबा ने कहा कि शुभ कर्म जो हम करने वाले थे, जिस उमंग से करने का सोचा था, वो उमंग भी बदल जाता है। इसलिए जो कर्म हमें करना है वो हमें तुरंत करना है। बाबा ने कहा, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा जो थे उनकी एक विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी? तो बाबा ने कहा कि अब नहीं लेकिन कब नहीं लेकिन अब करना है। तो बाबा ने कहा कि इसे तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। एक होता है दान और एक होता है तुरंत दान। तो बाबा ने कहा कि अगर तुरंत दान नहीं करते हैं, समय लगाते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकल रूप में लाने में समय लगा देते हैं, तो वो तुरंत दान नहीं कहलाता है, वो दान कहलाता है। और बाबा ने कहा तुरंत दान जो होता है वो महादान होता है और महादान का फल महान होता है। क्यों महान होता है? क्योंकि बाबा ने कहा कि महान इसलिए होता है कि संकल्प को जब हम प्रैक्टिकल रूप में लाने के पहले सोचते हैं कि कर लेंगे, समय लगा देते हैं, तो उस समय को लगाने में क्या होता है कि सोचने और करने के बीच में माया को चांस मिल जाता है आने का। जो काम हम 100% करने वाले थे वो फिर हम कम परसेंट में करते हैं। जो चीज के लिए हम 8 घंटे लगाने वाले थे फिर बाबा ने कहा 6 घंटे लगाने लगते हैं, 2 घंटे कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा धन के लिए कहा कि धन जो 100% दान करने वाले थे वो फिर 50% करते हैं, 50% के लिए सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, है ना। सब कुछ बाबा का ही तो है, लेकिन बाबा ने कहा कि अपना तन मन धन सब कुछ तुरंत दान करना है, तभी वो महापुण्य कहलाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने आगे कहा कि जो बलि का उदाहरण दिया है बाबा ने, कि जो बलि चढ़ाते हैं, जो तुरंत बलि चढ़ाते हैं वो महाप्रसाद का रूप बन जाती है, लेकिन यदि टाइम लगाते हैं, बकरे को जैसे बाबा ने उदाहरण दिया बलि चढ़ाते हैं तो वो चिल्लाता है, है ना, और चिल्लाता है, और सोचने में समय जैसे लगा देते हैं बलि चढ़ाने में, तो वो महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ भी ऐसे ही होता है। क्या होता है कि जो बच्चे एक धक से झाटकू बन जाते हैं, तुरंत बाबा के बन जाते हैं, वो महाप्रसाद के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि करूं कि ना करूं, हाँ, बाबा को स्वीकार करें या ना करें, ये सत्य ज्ञान है या नहीं है, ऐसे सोचने में समय लगा देते हैं, तो वो महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो करना है वो तुरंत करना है, क्योंकि जो तुरंत करेगा वो तुरंत पाएगा, नहीं तो जो सोचते सोचते रह जाते हैं, बाबा ने कहा वो सोचते सोचते त्रेता युग तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जीवन में भी होता है, कुछ आत्माएं महाप्रसाद का रूप बन जाती हैं। होता क्या है कि वो ज्ञान में आई, उन्होंने बाबा के बारे में जाना कि बाबा ऐसा है, पूरी जानकारी उनके बारे में ली, तो कुछ आत्माएं क्या करती, अंदर से बाबा को सुनते ही, बाबा के बारे में जानते ही, खुद के सत्य स्वरूप के बारे में जानते ही, तुरंत बाबा को भीतर से अंदर से पूरी तरीके से स्वीकार कर लेती हैं, है ना, पूरी तरीके से अंदर से उनके प्रति समर्पित हो जाती है। उनकी चेतना निरंतर ऊपर की ओर, उसकी ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म उनका उसके लिए होने लगता है। तो ऐसी आत्माएं क्या बन जाती हैं, महाप्रसाद बन जाती हैं। और महाप्रसाद आत्माएं जिसके भी जीवन में जाती हैं, उन आत्माओं के जीवन को भी क्या बना देंगी, महाप्रसाद बना देंगी, जिससे बाबा कहता सेवा करना, है ना, वायुमंडल चेंज कर देती हैं। वायुमंडल को भी महाप्रसाद का रूप बना देंगे। महाप्रसाद माना पवित्रतम है ना, श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है, तुरंत दान महापुण्य करना है, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है, बाबा ने कहा कि सदा समर्थ संकल्प करने हैं, क्योंकि समर्थ संकल्प का एक का बाबा ने कहा पदम गुणा फल बनता है इस समय। इसी प्रकार से बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प का भी एक का कई गुना ज्यादा बढ़कर हमें मिलता है ना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है, छोटी सी बात है लेकिन उसमें ही दिल शिकस्त हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी, उनको समझ में नहीं आता कि हम अब क्या करें सिचुएशन में, छोटी सी बात है। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना, आज की मुरली से कोई भी परिस्थिति है, वरदान में है, कोई भी परिस्थिति है उसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए बिंदु स्वरूप बाप की, शायद स्वरूप शब्द बाबा ने पहली बार यूज किया खुद के लिए। तो बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा की स्मृति में रहना है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग पावर भी रखना है। फिर बाबा ने कहा कि जो समर्थ हमें इस समय क्या करने है, समर्थ संकल्प करने है। अब समर्थ संकल्प आए कहां से, साकार मुरली समर्थ संकल्पों से भरी है, अव्यक्त वाणी समर्थ संकल्पों से भरी है, तो उनका चिंतन मनन करते रहें, उनको धारण करते रहें। अब बाबा ने एक तरीका और बताया कि आप जो आज की मुरली में कि समर्थ संकल्प जो आप करते हैं वो सफल कैसे बने, क्या बताया सफल बनने का तरीका। बाबा ने कहा कि क्या करना, सदा बीज रूप बाप से हर समय आपका जो संकल्प रूपी बीज है उसमें क्या करना, सर्व शक्तियों का बल भरते रहना है। सारा दिन हमें आज ये योग का प्रयोग करते रहना, कोई भी एक श्रेष्ठ संकल्प रखिए कि अशरीरी बनना या कुछ भी, उसको बाबा से बल भरते रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहना। फिर बाबा ने अगला, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट बाबा ने दिया है कि ऐसे भले अकेले हो जाओ बच्चे, बाह्य मुक्ता से, बाहरी संसार से छल कपट रख दे, सबसे अलग हो जाओ, लेकिन बाबा के साथ से हमें अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा कि क्यों बाबा के साथ से अलग नहीं होना, क्योंकि यदि हम बाबा के साथ से अलग हो जाते हैं तो क्या होता है। बाबा ने कहा फिर आपका जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं होता है, ब्राह्मण जीवन नहीं कहलाएगा। फिर बाबा ने कहा कि हमारी और बाबा की जो जोड़ी है, बाबा ने कहा इतनी वंडरफुल जोड़ी सारे कल्प में फिर कभी दिखाई नहीं देगी, इतनी श्रेष्ठ जोड़ी। बाबा ने कहा चाहे आप लक्ष्मी नारायण भी बन जाएं लेकिन ऐसी जोड़ी नहीं होती है। बाबा ने कहा इस समय आपका जो रूप है वो कंबाइंड रूप है, ये संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। फिर बाबा ने आगे कहा कि यदि आप एक सेकेंड भी अपने कंबाइंड रूप से अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, बाबा ने कहा इसका अनुभव सभी को है। फिर बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी अलग होते हैं इसका अनुभव है, फिर क्या होते हैं, उदास से हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पहाड़ों पे चले जाते हैं, सागर किनारे चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं और दुखी होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा होना नहीं है, आप इन जगह पर जाएं, लेकिन किसके लिए जाएं, मनन करने के लिए आपको इन जगहों पर जाना है, और किस अकेले नहीं जाना, बाबा ने कहा बाबा को साथ लेकर के जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को साथ लेकर के रखेंगे तो क्या होगा, कभी दुखी नहीं होंगे, है ना। ये संगम युग ऐसा समय है कि अब हमें हमेशा बाबा के साथ ही रहना। बाबा ने अपना वायदा भी याद दिलाया हम ब्राह्मणों को कि बच्चे आप ब्राह्मणों का वायदा है बाबा के लिए कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, तो साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बाबा ने कहा ये कितना दृढ़ वायदा आपने अपने अंदर धारण किया है, क्योंकि दृढ़ता से यदि हम बाबा को साथ रखते हैं तो क्या होगा, दृढ़ता सफलता की चाबी है, हर कदम में हम सफल होंगे। फिर और अब नहीं करेंगे, बाबा को साथ नहीं रखेंगे तो कभी नहीं रख पाएंगे, अब नहीं तो कब नहीं। फिर अगला पॉइंट है चौथा, जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई है कि ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या देखी। बाबा कभी ये नहीं सोचते थे कि क्या होगा, पहले सोचूं फिर करूं, नहीं ऐसा नहीं सोचा बाबा ने। बाबा क्या करते थे, तुरंत दान महापुण्य करते थे। इस तुरंत दान महापुण्य की विशेषता के कारण बाबा नंबर वन महान आत्मा बन गए, और नंबर वन महान आत्मा बनने के कारण बाबा ने चार रूपों में इनकी पूजा बताई है। बाल रूप में इनकी पूजा श्री कृष्ण के रूप में होती है, युवा रूप में इनकी पूजा राधे कृष्ण के रूप में होती है, तीसरा गोप गोपियों के रूप में गायन पूजन है, और चौथा लक्ष्मी नारायण के रूप में इनकी पूजा होती है। बाबा ने कहा ये एक ही एकमात्र ऐसी महान आत्मा है जिसकी भिन्न भिन्न आयु के रूप में पूजा होती है और भिन्न भिन्न चरित्रों की पूजा होती है। बाबा ने कहा राधे भी है, उनकी भी पूजा होती है, लेकिन बाबा ने कहा नंबर वन और नंबर टू में अंतर तो फर्क तो होता है ना। तो हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाबा की विशेषता स्वयं में धारण करनी है, तुरंत दान महापुण्य करना है, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। फिर अगला पांचवा पॉइंट है, बाबा ने कहा कि आज लवफुल बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। जमा के खाता में बाबा ने चार प्रकार के खाते देखे, कौन कौन से, ज्ञान का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना और समय का खजाना देखा। बाबा ने कहा आप सब बच्चों को भी अपने इन चारों खजानों को चेक करते रहना है कि कितना भरा है, और भरते रहना है, क्योंकि इन संकल्प इन खजानों को भरने से सारे कल्प, 21 जन्म ही नहीं सारे कल्प में हमारी प्रारब्ध बनती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि जो अष्ट गाए जाते हैं उतने ही महान वो इष्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खातों को क्या किया है, कंप्लीट भरा है, तो वो उतने ही श्रेष्ठ राज्य पद भी पाते हैं, तो उतनी ही श्रेष्ठ उनकी भक्ति मार्ग में पूजा भी होती है। बाबा ने कहा कि जैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो प्रजा उनको माता पिता के रूप में प्यार करती है, और उनकी पूजा जब होती है तो उनको उतने ही श्रेष्ठ प्यारे इष्ट के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने खातों को चेक करते रहना है, क्योंकि अभी चेक नहीं करेंगे तो अब नहीं तो कब नहीं। फिर बाबा ने अगला पॉइंट छठवा बताया है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को देखते हैं, इसलिए कभी कैसे हो जाते, कभी हलचल में आ जाते, कभी अचल हो जाते हैं, लेकिन बाबा तीनों कालों को देखते हैं। तीनों कालों को देखने के कारण बाबा उस स्थिति में बच्चे को देखते हैं कि ये कल्प पहले का मेरा अधिकारी बच्चा है, हकदार बच्चा है, तो बाबा वो हलचल वाली वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बाबा उसका भविष्य श्रेष्ठ स्थिति को देखते हैं, भविष्य श्रेष्ठ देखते हैं, हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं बाबा। ऐसा तो बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे में कोई विशेषता ना हो, हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता तो जरूरी ही है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि आप यहाँ आए, बाबा से मिलन सम्मुख मना रहे हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमें भी क्या करना है, विशेषता ही देखनी हर एक की। और हाँ, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बाबा को हर एक बच्चे से मिलने में और हर एक बच्चे की मीठी मीठी रूहानी खुशबू लेने में मजा आता है। तो हमें भी बाबा की मीठी मीठी रूहानी खुशबू लेने में मजा आना चाहिए आत्मा को। फिर बाबा ने कहा अगला पॉइंट, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब नहीं कर पाएंगे, चेकिंग करते रहना। लास्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं उससे पहले हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प करने के समय बाबा ने कहा हमेशा ये स्लोगन याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। इससे क्या होगा, बाबा ने कहा इससे ये होगा कि हर श्रेष्ठ कर्म में हम तीव्र बन आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर उमंग उत्साह हमारा बढ़ता जाएगा बाबा ने कहा, और रूहानी जागृति स्वतः आती जाएगी, और जो साधारण संकल्प हमारे चलते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, चलना तो है ही, बनना तो है ही, करना तो है ही, बाबा ने कहा ये साधारण संकल्प हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये स्मृति आ जाती है कि अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है अभी करना है, इसी समय करना है, और इसी को बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। फिर इस मुरली में आगे ब्रजेंद्र दादी से मुलाकात करी है बाबा ने, फिर याद प्यार दिया है वो फिर कभी। ओम शांति,
ओम शांति। 7 मिनट 7 पॉइंट की जो मुरली अव्यक्तवाणी रिजन चल रही है उसमें आज का जो डेट है 23 जनवरी 1985 की मुरली है, तो दिव्य जन्म की दिव्य गिफ्ट है दिव्य नेत्र। तो बाबा ने इसमें कहा है सबसे पहला पॉइंट है दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र। बाबा ने कहा इसमें हर बच्चे को ब्राह्मण बनते ही 100% दिव्य नेत्र या दिव्य बुद्धि दी है, तो इसी दिव्य बुद्धि को बाबा देख रहे थे। तो किसी ने अटेंशन प्रमाण, किसी ने प्रवेश प्रमाण और किसी ने कार्य प्रमाण, प्रैक्टिकल कार्य में लाया है, तो ये जो शक्ति है चलते चलते कम हो गई है। तो इसका कम होने का कारण बाबा ने बताया कि श्रीमत का अटेंशन नहीं रखते, इस कारण ये बुद्धि कम हो जाती है, दिव्य बुद्धि कम हो जाती है, और ये कम होते होते कम खत्म भी हो जाती है, इसलिए हमें दूसरों की विशेषता दिखाई नहीं देती है। और बाबा ने कहा हर एक बच्चे को 100% ये दिव्य बुद्धि दी है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया है। तो ये पहला पॉइंट है कि भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र दिया है। दूसरा पॉइंट है शक्तिशाली दिव्य नेत्र। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, शक्तिशाली दिव्य नेत्र से सजे सजाए डबल लाइट स्वरूप को अपने देख सकते हैं, जैसे अभी फरिश्ता सो देवता, इस दिव्य स्वरूप से हम जैसे बाबा कहते हैं दूरबीन होता है जो दूर की वस्तु को स्पष्ट और समीप दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं अगर ये नेत्र हमारे क्लियर होंगे तो हम 5000 वर्ष के जो हमारे चरित्र हैं उसको हम क्लियर देख सकते हैं। अगर इस दूरबीन में अगर कमजोर हो गए आंखें दिव्य नेत्र की तो यह स्पष्ट और काले आ जाते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देती है, कमजोरियां दिखाई देती है, और कमजोरियां दिखाई देने के कारण वो विशेषता हम में नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर इस नेत्र को अगर शक्तिशाली बनाना है तो दुआ का हो दवा का हो चाहे अटेंशन का हो तो श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने हमें दिया है वह करते हैं तो फिर से यह नेत्र शक्तिशाली हो जाएगी। तो बाबा ने कहा यह शक्तिशाली नेत्र होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बाबा ने कहा कि यह नेत्र टीवी भी है जिसे हम पूरे 5000 वर्ष की देख सकते जो हमने क्या क्या पाठ बताया बजाया है। तो बाबा ने कहा कि दिव्य नेत्र में क्या देखते हैं, हम स्वर्ग में देवी देवता थे, उस देवी देवताओं में क्या क्या पाठ बजाए, कौन कौन से जन्म थे हमारे, ये सब हम अपने दिव्य नेत्र से देख सकते हैं। वहाँ का नृत्य, वहाँ का डांस, बाबा ने यहाँ पे जिक्र किया कि अगर हम यहाँ का डांस देखते हैं तो डेंजर डांस है। तो डेंजर डांस क्या होता है, खतरनाक होता है। तो बाबा ने कहा अगर आप फ्री हो, फ्री अगर टाइम है तो वहाँ के नृत्य को देखो, वहाँ की रासलीला को देखो, अगर फ्री हो तो वहाँ के एक एक जन्मों की कहानी, एक एक आत्मा की दिव्य जन्म की कहानी को देखो। तो इस कहानी को देखने से क्या होगी, हमारे नेत्र फिर से दिव्य हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है यंत्र, है ना, बाबा ने कहा ये यंत्र भी है, जैसे कोई भी यंत्र से हम अपनी मंजिल सहज पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे इस स्थूल आंखों से शरीर स्पष्ट दिखाई देता है, अगर ये दिव्य नेत्र हमारे पास है तो इस आत्मा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है गुप्त रूप में, उसको हम दिव्य और स्पष्ट और क्लियर देख सकते हैं। और दिव्य नेत्र से क्या दिखाई देता है, बाबा ने कहा दिव्यता दिखाई देती है और दिव्य गुण ही दिखाई देते हैं। अगर इसमें कमजोर हो जाती है नेत्र तो इसमें अवगुण भी दिखाई देने लगते हैं। तो अगर दिव्य नेत्र सदा हमारी रहती है चलते फिरते उठते बैठते, तो बाबा ने कहा हर आत्मा के दिव्य गुण ही दिखाई देंगे, अवगुण दिखाई नहीं देंगे। और बाबा कहें अगर अवगुण दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि हमारे दिव्य नेत्र कमजोर हो चुके हैं। तो उसकी इलाज बाबा ने ही कहा कि श्रीमत जो बाबा ने दिए उसको फिर से रिवाइज करो तो यह नेत्र आपकी शक्तिशाली हो जाएगी। फिर पार्टियों की मुलाकात में बाबा ने कहा पहला सहज योगी बनने का साधन, इसमें बाबा ने संबंधों के बारे में कहा, जिस संबंध का हमारा सबसे ज्यादा प्यार होता है वहां या उसे याद करना बहुत सहज होता है। तो बाबा ने कहा कि सर्व संबंध का अनुभव हमें एक बाप से करना है, जितना ज्यादा हम बाप के साथ अपने संबंधों का अनुभव करेंगे उतना बाप के साथ रहना सहज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, और इसमें बाबा ने एक उदाहरण भी दिया कि गोपी और उद्धव का, उद्धव जो होते हैं वो ज्ञान को सुनना सुनाने का काम करते हैं, लेकिन जो गोपी होती है वो प्रभु प्यार का अनुभव करती है। तो बाबा ने एक लाइन और कहा यहाँ पे, ज्ञान सुनाना और सुनना ये अलग चीज है लेकिन प्यार का अनुभव करना वो अलग चीज है। तो बाबा कहते उद्धव नहीं बनना है लेकिन गोप गोपी बनना है, सच्चे परमात्म प्यार का अनुभव करना है। और लास्ट पॉइंट है सहज योगी ऊंची स्थिति, बाबा ने कहा अगर ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे तो परिस्थिति हमें छोटी लगेगी। जैसे बाबा कहते हैं इसमें उदाहरण भी किया, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो कोई भी फ्लाइट से अगर हम नीचे चीज देखते हैं तो हर चीज हमें छोटी लगती है और परिस्थिति नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं आप हमेशा हमेशा जो बाबा ने सम्मान हमें दिया है ऊंची स्थिति में स्थित रहने का, उसे अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो हमारी स्थिति और बातें जो भी है वो छोटी लगेगी। और कोई भी चीज को हम ऊपर से देखते हैं तो हमें क्लियर और स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात, परिस्थिति या विघ्न, कोई भी समस्या आती है तो बाबा कहते हैं उस विघ्न से ऊपर उठ के देखो तो हर चीज आपको क्लियर दिखाई देगी और आपकी स्थिति भी ऊपर रहेगी। तो ये ओम शांति।
ओम शांति ये मुरली का टाइटल है। ओम शांति 26/2/84 ये मुरली है। मुरली का टाइटल है रूहानी चित्रशाला, बाप दादा के रूहानी चित्रशाला। और मेरे को बोला था इसका भी एक चित्र बना के लिए आने का। सम्मुख आप देख रहे हैं एक चित्र है। इस चित्रशाला में जब हम लोग स्कूल में जाते थे तब पहले कुछ ज्ञान नहीं होता है, ABCD आ का ख ये सब सिखाना होता है। फिर बाद में थोड़ा ज्ञान की विषय देता है, उसमें इतिहास, भूगोल, कुछ मैथ, कुछ एक दूसरा सब्जेक्ट बाद में होता है विज्ञान। तो यहाँ भी तो विज्ञान का भी अगर ऊपर जाओ तो उसमें भी तीन भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी का भी बहुत सारे भाग होता है। तो यहाँ भी जब हम लोग ज्ञान में आए तो हम लोग कुछ समझाते नहीं है। अब देखो ये लक्ष्मी नारायण बनना है, उसके लिए क्या क्या करना है ये दिखा देते हैं। फिर बाद में जब कोर्स करते हैं आत्मा का लेसन चालू होता है। आत्मा का लेसन क्या है, वो स्टार है, ये है, ऐसा कुछ वर्णन होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं चित्र में भ्रुकुट के बीच में स्टार है, वो आत्मा। फिर बाप दादा ने आत्मा के ऊपर डीप रियलाइजेशन करा रहे हैं। यहाँ जो बोला जे आत्मा का भी यहाँ पर तीन भाग है, वो क्या है, मन बुद्धि संस्कार। वो तो पहली स्टेप में चला गया, ये उसके अपर डीप में जा रहे हैं। तो ये एक है प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। कुछ दिन पहले बाप दादा ने मुरली में बताया था कि तीन खाता जमा करने का, पुरुषार्थ से प्रलब्ध का खाता। ये प्यूरिटी का पर्सनैलिटी है, ये पुरुषार्थ से प्रलब्ध का था। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करेंगे और अपने आप को आत्मोन्नति करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्यूरिटी का ओरा बढ़ता जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना सर्कल सर्कल, तो ये प्यूरिटी का ओरा। हाँ वो तो है ना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दूसरा, प्यूरिटी का पर्सनैलिटी जितना आप आदि से लेकर ब्राह्मण जन्म से लेकर अभी तक उसको बजाय रखेंगे तो आपका ओरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और उसमें बीच बीच में क्या होता है उसके बाद में विश्लेषण में आएंगे। दूसरा, रूहानी रियलिटी, वो क्या है, रूहानी रियलिटी माने चेहरे में मुस्कान कैसा है, खुशनुमा कैसा जीवन है, सत्यता कैसा है, दिव्यता कैसा है, उसमें आ जाता है। उसमें भी दिखाया था जो पुरुषार्थ से प्रलब्ध का था, संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करना, ये पुण्य का खाता। ये जो हमने बोला ना रूहानी रॉयल्टी, तो ये वही है। जितना आप अपना संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट कौन रह पाएगा, जो भरपूर होंगे, बाबा के खजाने से मालामाल होंगे, सब प्राप्ति स्वरूप होंगे, तब संतुष्ट रहेंगे। और जो भी उसके नजदीक आएंगे वो भी सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये हर्षित मुक्ता उसका निशानी है, और मन प्रफुल्ल कितना है ये सब उसका निशानी है। तीसरा जो है उसमें सारे सब खेल चलता है कि संबंध संपर्क में समीपता। ये जो लास्ट में उस टाइम बाबा ने बोला था ना दुआओं का खाता, वो कैसे, जो भी आप सेवा करो निस्वार्थ सेवा करो, सेवा अर्थ सेवा करो, परमार्थ बन जाए। तो यहां भी जितना हम दुआओं का खाता जमा करेंगे, जितना आत्मा के नजदीक जाएंगे और उसको संतुष्ट कर देंगे, वो आपको क्या करेगा, दिल से दुआएं देंगे। तो दुआओं का खाता जितना जमा होगा तो आप दादी का वो जो लाखों लाखों लोग सामने वो दादी जी जब सकाश दे रहे, उस चित्र को आप इमेज करिए। तो और साधारण आत्मा हम लोग के पास कोई नहीं, जिज्ञासु भी नहीं, लेकिन बाबा भी बोलते हैं, जिस दिन उस दिन बोला ना, खोटे शिक्षक का भी एक दिन महत्व होता है, क्योंकि ये सब भी विशेष आत्मा है। बाबा ने यहाँ चुन चुन के रखा है, किसी का अभी देख रहे प्रभाव है कुछ है, लेकिन जो भी साधारण आत्मा है एकदम कुछ उसका नाम मान सान है, लेकिन समय पर काम दे देता है, उसी कारण से वो विशेष बन जाता है। इसीलिए हम लोग को भी देखना है हम लोग किस ग्रुप में है। ये जो तीन विशेषता बताया रूह, एक है प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रियलिटी और संबंध संपर्क में समीपता। ये तीन होने के बाद बाप दादा ने इसको अबर तीन भाग में डिवाइड कर दिया। वो कौन सी है? जैसा डॉक्टर क्या करता है किसी का तंदुरुस्ती देखने के लिए, हाथ दिखा, ये नाड़ी दिखता है, उसमें उसको पता चलता है इसका, हाँ तो तंदुरुस्ती ठीक है या नहीं है। यहाँ भी हमारा क्या है, वो पुरुषार्थ का जो हो रहा है ये है कुछ, ये हर टाइम समान है या कम ज्यादा हो रहे हैं। वो जैसा थर्मोमीटर में बुखार आदि देखते हैं ना, इसका भी कुछ मशीन है। दूसरा, इसमें कुछ कलर्स भी चेंज होता है, जैसा बीमारी हो जाता है ना, पीला रोग जॉन्डिस पीला हो जाता है, खून का कमी होता है तो सफेद हो जाता है, तो इसी में भी हमारा कलर चेंज होता रहता है। वो कौन सी कलर? ये पुरुषार्थ की कलर। कभी आप जोश में आवेश में आ जाओ तो ये पुरुषार्थ कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो सफेद बा पीला, ये हमारा योगी का लाइफ का प्रभाव मंडल है, लेकिन वहां क्या होगा, क्रोध आए तो लाल हो जाएगा और ब्राउन हो जाएगा, कुछ नहीं ज्वालामुखी होगा तो मन शीतल होगा, तब आपका कूलनेस, जितना ज्वालामुखी उतना मन शांत, तो है कलर, कलर एकदम सफेद हो जाएगा। अगर दिखाते हैं ऊपर स्टार ब्लू होता है, नीला होता है, तो बहुत प्रभावशाली ताकतवान होता है। यहाँ भी जिसका है उसी अनुसार अगर बाबा दिखा देवे तो वो ज्ञानी और गुणी। और ज्यादा तो विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन कलर बाबा ने बताया और ज्यादा विश्लेषण नहीं किया। लास्ट में और एक बताया, जैसा उधर पेशेंट को डॉक्टर कैसे दिखाता है, हाँ मेरा छाती दर्द हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने एग्जाम करके देखता है, गाड़ी तो पुरुषार्थ की सभी है, पता ठीक नहीं चलता है। वहां बताते हैं डॉक्टर, जब जो हार्ट पेशेंट है ना, 80% ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके बाद उसको पेशेंट को पता चलता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता चलता है अभी तो 80% के ऊपर इसका चल रहे हैं, इसीलिए इसको कुछ कुछ पेज में कर वो ऑपरेशन आदि कर देते हैं। यहां भी क्या होता है, पुरुषार्थी तो सब है, लेकिन पहले पहले कुछ पता नहीं चलता है, बाद में कुछ समस्या हो जाता है, कुछ क्लास में नहीं जाता है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बात है, तब उसको पता चलता है। अर्थात यहां भी हमारा ये जो कलर है, प्योरिटी है, रुक रुक के चलता है या एक रस अवस्था है, वो भी देखने का है। तो ये तीन तीन छह बातें हो गए। बाद में अगर सब ठीक है तो जैसा लक्ष्मी नारायण का चित्र के चारों तरफ प्रभा मंडल कितना एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक है, अगर साधारण आत्मा होता है तो उसका थोड़ा सा होता है, उसके ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो बीच का होता है। तीसरा जो बताया, एक है प्योरिटी का, दूसरा लास्ट में जो बताया संबंध संपर्क में समीपता, आत्मा का तेज वो कितना है, तो आत्मा का तेज जितना होगा वो क्या करेगा, आत्मा को खींचेगा, आकर्षण करेंगे, कशिश होता है। जैसे बाबा बता रहे हैं, जैसे दादी, तो लाखों आत्मा उसके मैंने प्यार में समा गए, तो उसी प्रकार आत्मा जितना प्रकाशमय होंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, बाबा जैसा बताते हैं, उसी माने कोटो में कोई होता है तो उसके प्रति सभी का नजर होता है। तो ये है, तो उसका आत्मा का गुण क्वालिटी अनुसार वो ये सारे प्रकाश एकदम माने जहां जाएंगे जैसा कोई लाइट की शरीर फरिश्ता चल रहे ऐसा महसूस होगा। ये छह बातें हो गए। लास्ट में और एक सात पॉइंट क्या है जो बाबा ने बोला मिलन, साकार में तो मिलन हुआ, अव्यक्त मिलन भी हुआ, लेकिन आप सभी जिस परिस्थिति में रहो, जहां भी रहो, वहां भी आपका अव्यक्त मिलन हो सकता है। वो कैसे होगा? जो जैसे जैसे बाबा ने बताया उसी प्रकार उससे आत्मिक अभ्यास करेंगे, ये सारे मेंटेन करेंगे, तो बाप दादा भी आपके साथ मिलन मनाएंगे जैसे साकार में मिलन मनाते हैं। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, जैसा मैं बाबा को देख रहा हूँ बाबा भी मुझको देख रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। अच्छा, ओम शांति। ये आपके सामने रूहानी चित्रसन। ओरा को जो बढ़ाना है, बाबा जो विधि बताया उसी अनुसार, वो बढ़ना कमना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके लिए हमें चिंतन नहीं करना क्या जो हमारा बढ़ रहे या कम रहे। बाबा का जो मर्यादा है, नियम है, कानून है, उसी अनुसार आप चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक रस रहेगा, बढ़ता भी जाएगा, वो अपना काम करेंगे उसी अनुसार। हाँ, रोज जो बाबा बोलते हैं अमृत वेला, उस दिन बाबा बोला ना जो 21 तिलक लगा, तिलक लगाने का, तिलक योग करने का, तो वो भी बहुत सारे विधि है, अब अपनाएंगे तो अपना आप बढ़ता रहेगा, वो तो अपने हाथ के ऊपर है। जैसे बाबा, हाँ बोलो, नहीं वो ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, बाबा हर एक का अपना अपना थर्मोमीटर रखा है, और जब बढ़ जाएगा ना तब हम कर्मातीत बन के ओम शांति हो जाएंगे। यही लास्ट पॉइंट है। ओम शांति।
ओम शांति। अव्यक्त वाणी है माताओं के प्रति। 7/4/1983 माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के अनमोल बोल। बाबा फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप। नष्टो मोह माताओं के लिए ज्यादा मेरा, मेरा बच्चा और मेरा पति, ये सब है। इसके लिए बाबा ने बोला है ये सब भूलने के लिए आत्मिक स्थिति में रहो, आत्मा समझकर पूरा काम करेंगे तो, बाप की स्मृति में रहेंगे तो नष्ट मोह बन जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है हलचल में परे रहने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति बोला है। मतलब माताओं का जो भी परिस्थिति आता है ना तो थोड़ा हलचल में आ जाते, तो बाबा ने हमको ये बोला है कि अभी परिस्थिति को पार करने के लिए बाप को साथ रखना है हमेशा, जो भी परिस्थिति आता है बाप को देना है। तीसरा पॉइंट है बाप की हूँ, बाप ने बोला है बाप की ही हूँ, मतलब मैं है ही बाप की जैसा, बाबा का जो है सब मेरा है, मतलब बाप बिंदु, मैं भी स्वयं आत्मा बिंदु, और बाप का जो भी खजाना है जो भी है सब मेरा है, मतलब शांति सुख आनंद सब मेरा खजाना है। और बाबा ये भी बोला है कि माताओं को विश्व कल्याणकारी, मतलब विश्व कल्याणकारी बाबा हमेशा माताओं को आगे रखा है और माताओं को कलश भी दिया है, इसलिए विश्व कल्याणकारी के लिए हम लोग जो भी देखते हैं सबको अपना देखना है, ये मेरा है, ये मेरा पति है, ऐसा नहीं देखना है ऐसा, मतलब नहीं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, मतलब जो मेरा घर है मेरा परिवार है ऐसे देखते हैं ना, ऐसे नहीं देखना है, मतलब सबको आत्मिक दृष्टि से, सबको बाई बाई की दृष्टि से देखना है, तभी सब विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। बाबा ये बोला है कि सबको, सब बच्चे को ऐसा लगता है कि बाबा ने पूरा सबके सामने मुरली चलाता है तो पर्सनल मेरे लिए ही कुछ कहता है, ऐसा सब बच्चे समझते हैं। मतलब पब्लिक में प्राइवेट जैसा हमको लगता है। वो क्यों, किस लिए ऐसा लगता है कि ऐसे एक एग्जांपल भी है, जो भी कृष्ण से डांस करते हैं तो सब लोग ऐसा लगता है तो कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे, सब गोपियों का ऐसा लगता है। ऐसे ही बाप का प्यार इतना इतना हम लोग को ज्यादा प्यार है कि जो भी मुरली चलता है को बाप मुझे ही बोल रहे, अपने लिए बोल रहे, ऐसा पर्सनल लगता है। और सिक्स्थ पॉइंट है, सदा अलौकिक को लौकिक को अलौकिक में स्मृति दिलाना है। बाबा ये इसलिए बोला है कि ज्यादा से ज्यादा माताओं का ये लगता है कि मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा काका, सब मेरा, ऐसे लौकिक ज्यादा ऐसे आ जाता है। बाबा ने इसको परिवर्तन करने के लिए बोला, क्योंकि हम जो भी संकल्प करते हैं, मेरा बच्चे का बुद्धि खुल जाए, मेरा इसका खुल जाए, उसका खुल जाए, तो वो संकल्प अच्छा है, लेकिन ऐसा मेरा करके बोलने से संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे। इसलिए लौकिक का अलौकिक में मतलब नहीं, सबका अच्छा होना चाहिए, ऐसे अलौकिक ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे भी नहीं बोलना है बाबा ने बोला। मतलब वो संकल्प ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लौकिक जैसे नहीं बोलना चाहिए, अलौकिक जैसे सबका अच्छा हो जाए, विश्व कल्याणकारी जैसा स्मृति रहे, स्वमान रहे, तो फिर सबका अच्छा हो जाएगा अपने आप। बाबा सेवेंथ पॉइंट बोला है कि ट्रस्टी बनने के लिए, निमित्त बनने के लिए, जो भी कार्य करते हैं ना कि देहबान में आ जाते हैं, फिर ऐसा सोचते हैं कि बाबा को साथ में रख के करने से निमित्त भाव आता है, और बाबा का याद में रहकर स्मृति करके करने से निमित्त भाव आता है, और निमित्त भाव बाबा मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे को बाबा यूज करते हैं, ऐसे भी सोचने से निमित्त भाव बढ़ जाता है। यही बाबा ने बोला सेवन पॉइंट्स।